श्रोताओं नमस्कार। यूरोपीय इतिहास के इस सफ़र में हम आ चुके हैं अपने अंतिम दौर में, जहां मैं रुद्र भानु प्रताप आपको अवगत कराऊंगा द्वितीय महायुद्ध के उन सभी अनछुए पहलुओं और उनकी स्पष्ट जागरूकता से। तो आइए शुरू करते हैं यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध। जिस समय 1920 में शांति के अस्थायित्व पर शंका की जा रही थी, उस समय यह भी सोचना मुश्किल था कि एक और महायुद्ध इतना निकट है। जब जर्मनी को पंगु बना गया था, तब किसे पता था कि हिटलर की बैसाखी लगाकर दौड़ने भी लगेगा। जब जनेवा में छत बिछत लोगों ने युद्ध की विभीषिका का हृदय विराधक दृश्य उपस्थित किया, तो कौन सोच सकता था कि विनाश को फिर नियंत्रण दिया जा रहा है। भिन्न माध्यमों से प्रकाशित आंकड़ों ने दहलाने वाला चित्र उभारा और यह सोचना कठिन था कि बेहतर आंकड़ों को कैसे तैयार किया जाए। यह अविश्वसनीय था कि जिस पीढ़ी ने एक भयानक युद्ध झेला है, वही पुनरावृत्ति करने को प्रस्तुत हो जाएगी और पुनः विश्व एक विनाशकारी घटनाचक्र में इतनी जल्दी फंस जाएगा। फिर भी ऐसा ही हुआ। सुदूर पूर्व में जापान ने मंचूरिया को धर दबोचा था, तभी भविष्य का पूर्वाभास हो जाना चाहिए था। पेरिस संधि और अपनी आंतरिक व्यवस्था से असंतुष्ट इटली, जब सत्ता मुसोलिनी और फासिज्म के चंगुल में आ गई, तब और अधिक स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि हवा का रुख किधर है। राष्ट्रसंघ के गठन के बाद भी जब फ्रांस इधर उधर बेमानी और बचकानी संधियां करता रहा, तो यह निर्विवाद था कि विभिन्न देश अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। हिटलर की भ्रष्ट और आक्रामक विचारधारा से सभी परिचित थे, फिर भी उसके हाथ में सत्ता आने के बावजूद पश्चिमी यूरोप के शासक नहीं चेते। स्पेन के वैधानिक सरकार को फासिस्ट ताकतों ने निर्लज्ज हस्तक्षेप के द्वारा उखाड़ फेंका और प्रजातंत्र के हिमायती देश नपुंसक नैतिक समर्थन देते रहे। अब भी समाजवाद को फासिज्म से सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा जा रहा था। युद्ध के बादल मंडराने लगे, बेमानी और निरर्थक छातों की तलाश जारी थी। बादल देवता की पूजा हो रही थी कि शायद न बरसे, पर पूजा तो भ्रम है। युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, आइए देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। पहला विस्फोट यूरोप में नहीं, एशिया में हुआ। जापान ने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया और एक चीनी प्रांत को हड़प कर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को हड़पने की तैयारी करने लगा। फ्रांस और इंग्लैंड एक शताब्दी पहले जो कुकृत्य कर चुके थे, वही जापान अब कर रहा था। जापान खतरनाक हो सकता था, लेकिन वह यूरोप से दूर था। फिर भी घटना और करीबी दोहराई गई। मुसोलिनी ने अबिसिनिया हड़प लिया और धर्म का राजनीतिक फायदा उठाने वाली पश्चिमी ताकतें धर्म के नाम पर ही दुनिया के सबसे पुराने ईसाई साम्राज्य की मदद करने नहीं आईं। जर्मनी में सत्ता उग्रवाद और नक्सलवाद साम्राज्य के हिमायती हिटलर के हाथों में आ गई। जब उसने राइन क्षेत्र में हस्तक्षेप किया तो तब उसे सबक देना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत उससे ही लोग आतंकित होते गए। स्पेन में फ्रांको ने फासिस्टों की मदद से वैधानिक सरकार की तख्ता पलट कर दिया और प्रजातंत्र के समर्थकों को केवल नैतिक समर्थन देते रह गए। म्यूनिख में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने स्वयं हुई संधियों और घोषणाओं को ताक पर रखकर चेकोस्लोवाकिया के साथ ज्यादती होने दी और तुष्टिकरण की नीति के द्वारा हिटलर से शांति खरीदने का मोह पालते रहे। म्यूनिख समझौता के बारे में चर्चिल ने स्पष्ट कहा था, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन तो युद्ध और असमान में एक को चुनना था। उन्होंने असमान को चुना और उन्हें युद्ध मिला। पश्चिमी नेताओं को जैसे सांप छू गया था। अब हिटलर ने किसी भी तरह जर्मन कहे जाने वाले सारे प्रदेश हड़प लिए और पोलैंड पर भी अधिकार कर बैठा। तब उन्हें होश आया, पश्चिमी देशों ने हस्तक्षेप किया। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि एक व्यक्ति या देश की बात नहीं, विश्वव्यापी खतरा है। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी पर विश्व केंद्रित नजर आने लगा। फ्रांस में सरकारों की अस्थिरता मुहावरा बन चुकी थी। इंग्लैंड में चर्चिल के अलावा अन्य नेता स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अकेले वहीं आसन्न युद्ध की योजना बना रहा था, लेकिन उसे युद्ध लोलुप कहा जा रहा था। अमेरिका का यूरोप से दूर रहकर दोनों में लाभ उठाने की पुरानी नीति थी। प्रथम महायुद्ध में वह बहुत मजबूरी में ही शामिल हुआ और युद्ध समाप्त होते ही अपने राष्ट्रपति विल्सन को अपमानित करके भी अपनी खोल में लौट गया था। रूजवेल्ट अपनी व्यवहारिकता और दूरदर्शिता के बावजूद यूरोप के खतरे को नहीं समझ सका और तटस्थ बना रहना चाहता था। अमेरिकी जासूसों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी उसने पहल नहीं की और अब जापानी हवाई बेड़े ने पर्ल हार्बर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तब वह युद्ध में शामिल हुआ। युद्ध की पूर्व संध्या पर पश्चिम देश के शासक, विशेष रूप से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, प्रवाह के बहते चले जाने वाली मनोवृत्ति से ग्रस्त थे। म्यूनिक से एकमात्र सबक लिया गया था कि शक्ति की कमी, बेयती और हार संभव है। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि यह व्यक्ति या देश की बात नहीं, विश्वव्यापी खतरा है। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी पर सारा विश्व केंद्रित नजर आने लगा। फ्रांस में सरकारों की अस्थिरता मुहावरा बन चुकी थी। इंग्लैंड में चर्चिल के अलावा अन्य नेता स्थिति की गंभीरता से नहीं समझ पा रहे थे। अकेले वहीं आसन्न युद्ध की योजना बना रहा था, लेकिन उसे युद्ध लुलूप कहा जा रहा है। अमेरिका की यूरोप से दूर रहकर दोनों तरफ से लाभ उठाने की पुरानी नीति थी। प्रथम युद्ध में वह बहुत मजबूरी में शामिल हुआ था और युद्ध समाप्ति होने के बाद अपने राष्ट्रपति विल्सन को अपमानित करने पर भी वह खोल में लौट गया था। रूजवेल्ट अपनी व्यवहारिकता और अदूरदर्शिता के बावजूद यूरोप के खतरे का महत्व नहीं समझ रहा था और तटस्थ बना रहना चाहता था। अमेरिकी जासूसों ने चेतावनी दिए जाने के बाद भी उसने पहल नहीं की। जब जापानी हवाई बेड़े पर्ल हार्बर में नष्ट कर दिए गए, तभी वह युद्ध में शामिल हुआ। युद्ध की पूर्व संध्या पर पश्चिमी देशों के शासक, विशेष रूप से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, प्रवाह की में चले जाने वाली मनोवृत्ति से ग्रस्त था। म्यूखनी एकमात्र सबक यह लिया कि शक्ति में कमी से बेइज्जती और हार भी संभव है। क्षमा करें, ये इसको दोबारा कर दिया हमने, इसलिए इसकी आगे से हम करते हैं। रूस के प्रति आश्वस्त बना रहा। रूसी विदेश मंत्री लिटवुनोव ने बार बार कहा कि शांति अविभाज्य है, अर्थात युद्ध से शांति भंग होने पर किसी क्षेत्र का देश तक सीमित नहीं रहेगा। यह बात पश्चिमी देशों के शासकों की समझ में नहीं आ रही थी। इतिहासकार सुमन का भी यही मत है कि विश्व को भयानक विनाश से बचाया जा सकता था यदि धुरी के देशों के विरुद्ध रूस से मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बना लिया जाता। अमेरिका अभी तो गोलार्ध की सुरक्षा यानी केवल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की सुरक्षा नीति अपनाए हुए था। इसलिए जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हिटलर और मुसोलिनी के आगे आगामी 10 वर्षों के लिए अनाक्रमण समझौता करने की अपील की, तो इटली और जर्मनी ने इसका माहौल उड़ाया। मई 1939 में धुरी देशों, जर्मनी, इटली और जापान ने एक इस्पाती समझौता किया जिसके द्वारा उनके बीच पहले की समझौता और एक सैनिक संधि में बदल गया। पश्चिमी देशों द्वारा ठुकराए जाने पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रूस ने अगस्त 1939 में जर्मनी के साथ 10 वर्षों का अनाक्रमण समझौता कर लिया। हिटलर, जो अमेरिका की ओर से आश्वस्त था, अब रूस की ओर से भी निश्चिंत हो गया। दुनिया के दोनों सबसे बड़े देश उसके लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं थे। ऐसी स्थिति में अपनी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। उसे अब भी आशा थी कि शायद म्यूनिख की पुनरावृत्ति हो जाए और पोलैंड की मदद के लिए कोई न आए, लेकिन इस बार पानी नाक के ऊपर चला गया था। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद में आ खड़े हुए और द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। इस तरह स्पष्ट है कि बिना मजबूर हुए किसी पश्चिमी देश ने फासिज्म के विरुद्ध न तो आवाज उठाई, न ही उसे समय रहते कुचल डालने की पहल की। अपनी कातरता और दूरदर्शिता और हितपूर्ति के संकीर्ण दृष्टिकोण और पूंजीवादी अंतर्विरोधे के कारण वे दुनिया को इस विभीषिका से नहीं बचा सके और अपने देश की सामान्य जनता को भी तबाह कर दिया। इस महायुद्ध की शुरुआत 1939 में हुई और 6 वर्षों बाद फासिस्ट ताकतों के पतन के बाद ही समाप्त हुआ। कौन जिम्मेदार था इस विनाशकारी अपराध के लिए? नूरेमबर्ग में जब नाथसी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तो उन्होंने क्षोभ से कहा, आप युद्ध में जीत गए हैं, इसलिए हम कटघरे में हैं। हम विजयी होते तो आज आप हमारी जगह होते। यह सच भी है। प्रायः हिटलर और मुसोलिनी को जिम्मेदार ठहराकर पश्चिमी देश अधिकांश इतिहासकार अपना दामन बचाते रहे हैं। युद्ध के कारणों के स्पष्ट होते ही उनका भी क्षोभ स्पष्ट हो जाता है। युद्ध के मूल कारण क्या थे, इस पर नज़र डालते हैं। इतिहासकार डेविड टॉम्सन ने इस संबंध में एक सरलीकरण प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार जर्मनी में नाथसियों ने इसलिए सत्ता हासिल की कि थोड़े ही दिनों में उन्हें गंभीर पूर्वक ले रहे थे। कुछ अन्यों का विश्वास था कि वे सत्ता पर अधिकार की दौड़ में नाथसियों को पीछे छोड़ देंगे। इस प्रकार नाथसी जर्मनी ने यूरोप पर इसलिए प्रभुत्व स्थापित किया कि सभी लोग यही सोचते रह गए कि ऐसी राक्षसी व्यवस्था सफल होने को कौन कहे, जिंदा भी कैसे रह सकती है। यह एक मामूली सा विश्लेषण था जो नाथसी पार्टी की जर्मनी में नाथसी जर्मनी को यूरोप में प्रारंभिक सफलता को इतिहास के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में और इतिहास की मूलधारा को काट कर देखती है और दूसरे महायुद्ध के कारणों में नाथसियों की विशेष जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। जब 1919 में यह कहा गया था कि युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध समाप्त हो गया और अब शुरू होता है शांति, जो शांति को समाप्त कर देगी, या यह कि वेर्साई संधि केवल युद्ध स्थगन समझौता ही है, जो निश्चित ही यह स्वीकार किया गया था कि युद्ध के कारण बने हुए हैं, और यह भी कि प्रथम महायुद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह एक यथार्थ था। युद्ध के मूल कारणों पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद तथा उसके अंतर्निहित अंतर्विरोधों को अलग करके भी देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम महायुद्ध के बाद पेरिस की नई व्यवस्था केवल शांति के लिए एक सकारात्मक प्रयास ही नहीं थी, उल्टे वह एक युद्ध उत्प्रेरक व्यवस्था थी। पेरिस में पराजित देशों के साथ क्रूरता बरत कर हिंसाप्रद बीज बोए गए थे। बंट्रिड रेसल ने जर्मन और फ्रांस के बीच इसी बदले की भावना को यूरोप में युद्धों का सतत कारण बताया था। नेपोलियन का बदला बिस्मार्क ने लिया और बिस्मार्क का बदला क्लेमेंसो ने लिया। क्लेमेंसो का बदला लेने की बाकी ही था कि जिसे हिटलर ने लिया। एजेपी टेलर के अनुसार वेर्साई संधि में जर्मनी राष्ट्रीयता का आधारपूर्ण अपेक्षा की गई। साथ ही संधि की 231वीं धारा के अनुसार युद्ध में सारी क्षति की जिम्मेदारी जर्मनी पर थोप दी गई थी। ऐसी संधि का अंत जर्मनी के लिए समान ही नहीं जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। पूरे युद्ध का मुआवजा देने और अपनी धरती पर विदेशी सेना को झेलना किसी भी राष्ट्र के लिए दुष्कर होता है। जर्मनी तो एक आक्रामक सैनिक परंपरा का देश था। कोई भी देश तो जर्मन जनता को आश्वस्त करता, वर्तमान संकट और अपमान से मुक्ति और गरिमामय भविष्य के सपने दिखाता, मुर्दा होते जा रहे जर्मन राष्ट्र में प्राण फूंकता। वह रातों रात लोकप्रिय होता जाता और जनता उसकी अंधाधुंध अनुकरण करती। इतिहास साक्षी है कि ऐसा ही हुआ। इसलिए युद्ध का एक स्पष्ट तात्कालिक कारण जर्मनी में नाथसीवाद का उदय हो सकता है, लेकिन नाथसीवाद के जन्म और विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? इटली में फासिज्म के जन्म और विकास के लिए कोई भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। इटली इंग्लैंड और फ्रांस जैसी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का अनुकरण कर रहा था और उसके प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। पेरिस संधि के बाद उसे असंतोष और वहाँ अर्थतंत्र का तथा प्रजातंत्र की असफलता के बाद मुसोलिनी के हाथ में सत्ता आने के इतिहास से हम परिचित हैं। इटली में फासिज्म की विजय को दबाने के बजाय पश्चिमी देशों ने बर्ताव के उस विश्वसनीय और सम्मानित बना दिया। इस प्रकार जापान भी प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों का साक्षी था, लेकिन पेरिस में असंतुष्ट होने के बाद वह उनसे दूर होता गया और पूंजीवादी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा ने जापान को आक्रामक बना दिया और उसने एशिया में फासिज्म की सूत्रपात कर दिया। जापान और इटली का फासिस्ट विकास निश्चित ही विश्व युद्ध का एक निर्णायक कारण बना। तीनों ही देशों में प्रतिक्रियावादी शक्तियां एकजुट हो गईं, धर्म खामोशी और तटस्थता से षड्यंत्रों में शामिल था। पोप ने फासिज्म का विरोध नहीं किया, सामंती मूल्यों को प्रश्रय मिला, पूंजीपतियों ने अपने हित का भरपूर विस्तार किया, देश के आर्थिक स्रोतों को भरपूर इस्तेमाल किया, उद्योगों का अधिक से अधिक विस्तार किया। विदेशी बाजारों में भी वृद्धि और इसके लिए राष्ट्रीय एकजुटता बिना आक्रामक हुए संभव नहीं था। इन लक्ष्यों के लिए उत्कट राष्ट्रीयवादिता एक उपयोगी उपकरण था। शुरू से इस विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब पुराने साम्राज्यवादियों के सामने नए साम्राज्यवादी उठ खड़े हुए और प्रतिस्पर्धा में मात देने को तैयार हो गए तो अंतर्विरोध स्पष्ट हो गए और अनिवार्यता भी हो गई। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों का विश्लेषण भी प्रासंगिक होगा। प्रथम महायुद्ध के दौरान विश्व को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित बनाने का नारा दिया गया। आत्मनिर्णय के सिद्धांत की वकालत की गई थी। इसके बावजूद उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के सहज और नैसर्गिक विकास का गला घोटा जा रहा था। यूरोप में तो अंततः राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित भी किया था, लेकिन एशिया और अफ्रीका में न तो राष्ट्रवाद को मान्यता दी जा रही थी, न ही प्रजातंत्र को। उल्टे यथासंभव उन्हें भटकाया जा रहा था और दमन का कार्य तेज हो रहा था। दूसरी ओर उपनिवेश के मालिक देशों में स्वयं राष्ट्रवाद उग्र से उग्रतर होता जा रहा था, विशेष रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में। फासिज्म का मुकाबला शुरू में पश्चिमी देश इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका चरित्र भी तो कहीं ना कहीं फासिस्ट ही था। इसलिए युद्ध के पहले किए गए विभिन्न देशों के साथ समझौते की लगातार अवहेलना की गई और ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ हिटलर के कुकृत्य को बर्दाश्त किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे विश्व में असंतोष बढ़ रहा था और स्थिति हर कहीं विस्फोटक होती जा रही थी। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित वाइमर गणतंत्र को पुराने राजतंत्र की मदद की अपेक्षा थी। जर्मनी में पहली बार जनप्रतिनिधियों की सरकारें बनी थी। इस नई सरकार को वेरसाई संधि ने पनपने नहीं दिया। यदि युद्ध की जिम्मेदारी केवल जर्मनी की ही मानी जाती तो उसके शासक विलियम द्वितीय और उसके सहयोगी व्यक्तियों पर नहीं थोपी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके पूरे देश को नतीजा भुगतने और सजा भोगने पर मजबूर किया गया, जो व्यवहारतः द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी गणतंत्र के साथ हुए, यानी सहानुभूति और सहयोग का व्यवहार वही पहले महायुद्ध के बाद भी होता तो स्थिति नाथसीवाद के अनुकूल न होती। यह अध्ययन का विषय है कि जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के बाद हिटलर का उदय हुआ और द्वितीय महायुद्ध के बाद विली ब्रांट का, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। पश्चिमी शासक साम्यवाद से इतने आक्रांत थे कि उन्होंने उसे फासिज्म से भी अधिक खतरनाक समझा था। रूस क्रांति के दमन के लिए उन्होंने हर प्रत्यक्ष परोक्ष कोशिश की थी और करते रहे थे, लेकिन फासिज्म के विरुद्ध उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने रूस को न तो पेरिस संधियों में शामिल किया और न ही बाद की अन्य व्यवस्थाओं में। राष्ट्रसंघ में बहुत कुछ दिनों तक उसे सदस्य नहीं बनने दिया गया। नाथसीवाद के उदय के बाद जब स्टालिन ने हिटलर के विरुद्ध दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे झटक दिया गया। यूरोप में युद्ध हो या शांति, बिना रूस को सम्मिलित किए उसकी सफलता असंभव थी। बाद में हिटलर का दमन भी बिना रूसी सहयोग से संभव नहीं था। नक्सलवाद किसी न किसी रूप में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमेशा एक तत्व रहा है, लेकिन जब से फ्रांसीसी वैज्ञानिक गोविन ने नक्सलवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर दिया था, वह एक राजनीतिक शक्ति बनने लगा था। दो महायुद्धों के बीच नक्सलवाद तनासाहों के हाथ में एक भयानक उपकरण बन गया और अल्पसंख्यकों, विशेषकर यहूदियों का भारी पैमाने पर दमन और विनाश किया गया। इस विकृति का अंत सामान्य स्थिति में संभव नहीं था। इस संदर्भ में प्रथम महायुद्ध के बाद शांति की पिपासा के कारण पैदा हुई कातरता को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक होता है, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री शांति का अर्थ युद्ध टालने में समझते रहे, उसी के लिए निरंतर कोशिशें की। इसलिए उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जिसका चरमोत्कर्ष म्यूनिख में हुआ, जबकि उन्होंने सारी नैतिकता और व्यवहारिकता को ताक पर रखकर निर्लज्जतापूर्वक हिटलर द्वारा चेकोस्लोवाकिया के साथ किए गए बलात्कार को भी स्वीकार कर लिया और उसे शांति के लिए आवश्यक बताया। शांति भंग होने में साल भर भी नहीं लगा। तुष्टिकरण की नीति कभी सफल नहीं होती। द्वितीय महायुद्ध के पहले तो यह घातक सिद्ध हुई। विल्सन के सिद्धांतों में सामान्य निशस्त्रीकरण की बात की गई थी, लेकिन पेरिस संधियों द्वारा केवल परास्त देशों को निशस्त्र किया गया। सामान्य निःशस्त्रीकरण के लिए जो भी सतही प्रयास किए गए वे असफल सिद्ध हुए, क्योंकि सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकित थे। ईएचकार ने फ्रांस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश में दो महायुद्धों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, लेकिन यह तलाश तो सबकी थी। फ्रांस केवल उसमें अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण अग्रणी था। जब परस्पर अविश्वास और आशंका व्याप्त थी तो निःशस्त्रीकरण की जितनी भी बात की जाए वास्तव में निरंतर शस्त्रीकरण होता रहता है। द्वितीय महायुद्ध के पहले अवश्यंभावी रूप से निःशस्त्रीकरण के प्रयास असफल हुए थे और इंग्लैंड तक को अपने इतिहास में पहली बार सैन्य सेवा को अनिवार्य करना पड़ा था। युद्ध प्रारंभ होने से पहले नए शस्त्रों की तलाश और पारंपरिक हथियारों का भंडार बनाने पर असंख्य धन खर्च हो गया। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों में दूसरों के प्रति वैमनस्य और घृणा का सुनियोजित प्रचार भी किया गया। और जबानी तौर पर युद्ध को टालने की बात करते हुए वास्तव में युद्ध को निरंतर अनिवार्य बनाया गया। इतिहासकार टाइनवी का कहना है कि युद्ध का जन्म युद्ध की इच्छा से होता है, इसलिए यह मनोविज्ञान का विषय है, विज्ञान का नहीं। यह एक भ्रामक विचार है। युद्ध स्थितियों में निहित होता है, मस्तिष्क में नहीं। जब दुनिया में बहुमत का शोषण होगा तब युद्ध कैसे रुकेगा? संपन्न और विपन्न के बीच संघर्ष आवश्यक है। द्वितीय महायुद्ध के उपयुक्त कारण मूल कारण की अभिव्यक्ति मात्र थे। मूल कारण है आर्थिक विषमता, औद्योगिकरण से उत्पन्न पूंजीवाद व्यवस्था में शोषण की अनिवार्यता, शोषकों के बीच अपना अंतर्विरोध और दुनिया का कई स्तरों पर परस्पर विरोधी तत्वों में विभाजित होना। यह निर्विवाद है कि औद्योगिक क्रांति के बाद गरीबों की संख्या बढ़ती चली गई और अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होते गए। इन दोनों के बीच खाई बढ़ती रही, दोनों अलग अलग संगठित होते रहे और दोनों वर्गों के बीच संघर्ष अनिवार्य होता चला गया। इसी प्रकार उद्योग के पूंजीपति विकास का आधार मुनाफा है और इसलिए सारा विकास शोषण पर आधारित है। शोषण न हो तो यह व्यवस्था मर जाएगी, इसलिए शोषण बढ़ता गया और परिस्थिति बस शोषित वर्ग भी संगठित होकर प्रतिकार करता रहा। इस प्रकार संघर्ष इस व्यवस्था में निहित रहा। इसके अलावा शोषकों के बीच के अपने अंतर्विरोध हैं, जैसे पूंजीवादी राज्यों और फासिस्टों के बीच का अंतर्विरोध। इसके नाते स्वयं इसमें तनाव रहता है और द्वितीय महायुद्ध के पहले तो मुख्य रूप से इसी तनाव ने विस्फोट किया। अंत में यह भी निर्विवाद है कि विश्व में समता और समानता नियम नहीं अपवाद थे। जीवन के हर क्षेत्र में हर स्तर पर विषमता थी और है। द्वितीय महायुद्ध इन्हीं कारणों के समन्वित परिणाम स्वरूप शुरू हुआ और छह वर्षों तक संघार का अद्वितीय क्रम चलता रहा। युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हिटलर के पोलैंड पर विद्युत गति से प्रहार के द्वारा शुरू हुआ। जर्मन स्थल और वायुसेना के मिले जुले प्रहार से पोलैंड चकित रह गया और एक महीने में ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध प्रारंभ होते ही ब्रिटेन और फ्रांस तथा उसके उपनिवेश युद्ध की घोषणा कर चुके थे। ज्ञातव्य है कि भारत के वायसराय ने बिना भारतीयों की राय लिए इंग्लैंड की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी और विरोध में प्रांतों के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। युद्ध के प्रारंभिक कुछ महीनों में पोलैंड के अंत के साथ ही बाल्टिक सागर तट पर स्थित राज्यों पर रूस का कब्जा हो गया और इस तरह युद्ध का केंद्र पूर्वी यूरोप ही बना रहा। पश्चिम में तो युद्ध की स्थिति थी पर युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन इसे फोनी वार भी कहा गया। युद्ध भी हो रहा था और आर्थिक नाकेबंदी के कारण समुद्र में। इस दौर की सबसे प्रमुख बात यह थी कि मुसोलिनी ने अपनी सीमाओं के कारण हिटलर से अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इसी बीच हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। नॉर्वे के नेता क्विजलिंग ने नाथसी पार्टी संगठित कर ली थी और अपने देश पर हिटलर के विजय में जिस प्रकार सहयोग किया उसे विश्वासघात का एक नया विभीषणी मुहावरा प्रारंभ हो गया। 1940 में ब्रिटेन को अपने योग्यतम राजनेता चर्चिल का आह्वान करना पड़ा और एक राष्ट्रीय सरकार का प्रधानमंत्री होते ही उसने न केवल अपने देश बल्कि हिटलर द्वारा आक्रांत तमाम देशों में एक नई स्फूर्ति भर दी। उसने अपने एक विख्यात भाषण में कहा, मित्रों, इस समय मैं आपको खून, आंसू, परिश्रम और पसीने के अलावा कुछ नहीं दे सकता। आप हमारी नीति जानना चाहेंगे? हमारी नीति है ऐसे दुश्मन के खिलाफ हर कहीं लड़ना, जमीन पर, हवा में, समुद्रों में, जिसकी शैतानी हरकतों की पूरी इतिहास में कहीं मिसाल नहीं मिलती। आप हमारा उद्देश्य जानना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य है जीतना, किसी भी कीमत पर। जीत के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं। इस उद्घोषणा ने निश्चित ही आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की। इसी बीच जर्मनी ने हॉलैंड, बेल्जियम और लुक्जमबर्ग पर कब्जा कर लिया। डंकर्क के पास घिरे 3,45,000 ब्रिटिश सैनिकों ने चमत्कारी ढंग से अपने को बचाकर संगठन और साहस का असाधारण परिचय दिया। अब फ्रांस की बारी थी। फ्रांस की सरकार बुरी तरह आतंकित थी। 5 जून 1940 को जर्मनी सेना ने उस मैग्नो लाइन को खिलौना साबित कर दिया, जिसे फ्रांस के इंजीनियरों और सेनापति ने एक दुर्भेद्य सुरक्षा पंक्ति माना था। इसी बीच इटली ने भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब फ्रांस अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। 14 जून को पेरिस का पतन हो गया। जब अमेरिका भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री रेने ने त्यागपत्र दे दिया और पेतैन प्रधानमंत्री बना। इस बूढ़े प्रतिक्रियावादी मार्शल ने साम्यवाद से फ्रांस को बचाने का आत्मनिर्णय की बात की। चर्चिल ने फ्रांस और ब्रिटेन का संघ बनाकर रक्षा का निमंत्रण दिया, लेकिन भीरो पैंतो आत्मसमर्पण कर चुका था और एक अपमानजनक संधि के द्वारा फ्रांस ने सत्ता जर्मनी के सुपुर्द कर दी। पेरिस पर जर्मनी का कब्जा था। देश के मध्य में विकी नामक नगर को केंद्र बनाकर एक शत्रु सहयोगी कठपुतली सरकार चलाने लगे। इसी बीच सेना का एक अज्ञात अफसर फ्रांस के बाहर प्रतिरोध का आह्वान करता रहा और इसी दुर्दम्य दागल ने देश विदेश में यह भ्रांति दूर की कि फ्रांस ने आत्मसमर्पण किया है। उसने लंदन में फ्रांस की स्वतंत्र सरकार बनाई। इधर फ्रांस के देशभक्तों विशेषकर साम्यवादियों ने प्रतिरोध का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। फ्रांस के बाद इंग्लैंड का नंबर था। अगर हिटलर तत्काल भरपूर वार कर देता तो परिणाम कुछ और होता। फ्रांस का युद्ध इतनी जल्द खत्म हो गया कि हिटलर तत्काल अपनी शक्ति को इंग्लैंड की ओर मोड़ नहीं सका। जब जुलाई में ब्रिटेन पर हमला शुरू हुआ तो ब्रिटेन कम से कम हौसले के स्तर पर तैयार था। इस युद्ध में अंधाधुंध बमबारी हुई। घर, अस्पताल, चर्च, सद्भावना, किसी को नहीं छोड़ा गया। लेकिन जैसा कि होता रहा है, संकट की घड़ी में ब्रिटेन की जनता ने अपने चरित्र का सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत किया और ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सका। हिटलर की हार यहीं से शुरू होती है। युद्ध का दूसरा मोर्चा बाल्कन प्रायद्वीप था, लेकिन जहां केवल बुल्गारिया को नाजी व्यवस्था स्वीकार की, यूगोस्लोवाकिया जर्मनी में मिला लिया गया। यूनान ने इटली की सेनाओं का डटकर मुकाबला किया, लेकिन जर्मन फौजों के सामने वह भी परास्त हो गया। अल्बानिया पर इटली का कब्जा ही था। इस तरह बाल्कन प्रायद्वीप फासिस्ट के प्रभाव में आ गया, लेकिन जगह जगह विशेषकर यूगोस्लोवाकिया में टीटो के नेतृत्व में देशभक्तों ने प्रतिरोध का गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। स्वेज नहर की रक्षा के लिए चिंतित ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया में जर्मनी का प्रभाव रोकने के लिए राष्ट्रसंघ द्वारा प्रदत्त मैंडेट क्षेत्रों फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, लेबनान और ट्रांसजार्डन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण दौर रूस पर जर्मनी के हमले के बाद शुरू हुआ। हिटलर साम्यवाद को सबसे बड़ा शत्रु समझता था। दूसरी ओर नाजीवाद के भयानक खतरे से सबसे पहले रूस ही आगाह हुआ था और उसने विरोध की पहल की थी। इसलिए मोलोतोफ रिबेंट्रॉप समझौता हुआ, तब भी उसने अस्थायी होने से किसी को विश्वास नहीं था। हिटलर के एक मंत्री और मित्र अल्बर्ट स्पियर का कहना है कि रूस विजय की योजना हिटलर के दिमाग में पहले ही आ गई थी। फ्रांस की पराजय के बाद ही हिटलर ने पूरब की ओर विस्तार की योजना बना ली। इंग्लैंड को छोड़कर पूरे पश्चिमी यूरोप और बाल्कन प्रायद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद उसने रूस के विरुद्ध पहल शुरू की। इसके पहले ही अमेरिका युद्ध में कूदे उसने 1941 में साम्यवाद के खिलाफ धर्मयुद्ध के नारे के साथ रूस पर हमला कर दिया। बहुत से लोगों का विश्वास था, स्वयं हिटलर का भी, रूस की जनता समाजवादी व्यवस्था विशेषकर स्टालिन से असंतुष्ट होने के कारण आक्रमण होने पर विद्रोह करके इससे मुक्त होना चाहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस में कोई विभीषण नहीं मिला। स्टालिन ने जितना जितना भी समय था उसने पूरे देश की लामबंदी कर दी और नाथसी प्रहार का सबसे अधिक साहस और संगठन से मुकाबला किया। प्रारंभिक कुछ महीनों में ही जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ती गई। इसी बीच चर्चिल ने घोर साम्यवादी विरोधी होते हुए भी नाथसीवाद के विरुद्ध रुद्ध रूस की मदद की घोषणा की। दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर की ओर रूस को मदद पहुंचने लगी। उधर जाड़ा शुरू होते ही रूस की अंतिम विजय असंभव लगने लगी। हिटलर को यही अनुभव होने लगा कि जाड़ा खत्म होते ही हिटलर ने रूस पर दूसरा भयानक हमला कर दिया। लेकिन स्टालिनग्राद की लड़ाई में रूसियों ने असाधारण हमले का परिचय दिया। महीनों तक बुरी तरह घिरे रहने और निरंतर बमबारी के बावजूद स्टालिनग्राद ने आत्मसमर्पण नहीं किया। एक एक इंच के लिए उन्हें प्रतिरोध करना किया और 2 फरवरी 1943 को उल्टे नाजी फौजों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहीं से हिटलर की पराजय की दौर शुरू होती है। इसी बीच 14 अगस्त 1941 को चर्चिल और अमेरिका प्रधानमंत्री रूजवेल्ट ने अंटार्कटिका चार्टर की घोषणा की, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का आधार बनी। इस घोषणा के अनुसार दोनों ने अपने देशों की सीमाओं का विस्तार को नकारा। उन्होंने कहा कि वे देश की जनता की इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन नहीं चाहते और हर देश की जनता के अपने अधिकार पद्धति के चुनाव का अधिकार का सम्मान करते हैं। उन्होंने नाथसी अत्याचारों को अंत करने और सबकी सुख सुविधा की गारंटी दी और शक्ति प्रयोग के परित्याग और निशस्त्रीकरण को आवश्यक बताया। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के रूप में जर्मनी का विरोध करने की घोषणा की। इसी बीच तनासाहों की आँख की किरकिरी अमेरिका बना हुआ था, विशेष रूप से जापान प्रशांत महासागर में निर्द्वंद होना चाहता था। जापान का पूर्वी एशिया में विस्तार हो रहा था। इसलिए दिसंबर 1941 ने जापान ने अचानक प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका द्वीपों के बंदरगाह पर्ल हार्बर पर भयानक हवाई हमला किया, जिसके कारण अमेरिका को भी युद्ध में कूदना पड़ा और महायुद्ध वास्तव में विश्वव्यापी हो गया। पूर्वी एशिया में जापान लगातार विजयी होता रहा। पूर्वी चीन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और बर्मा होती हुई जापानी फौजें हिंदुस्तान की सीमाओं पर मंडराने लगी। सामुद्रिक लड़ाइयों में भयानक विनाशलीला जारी थी। असंख्य युद्ध टोप डुबाए जा रहे थे। इसी दौर में सबसे महत्वपूर्ण घटना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जापान का प्रतिरोध। जापान की अत्याधुनिक और आक्रामक सेना चीन के मुक्ति क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाई। इसी बीच इटली के उत्तरी अफ्रीका पर प्रभुत्व को समाप्त करने के प्रयास हुए थे, लेकिन जर्मन सेनापति रोमेल ने फिर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया था। अक्टूबर 1942 में ब्रिटेन और अमरीकी फौजों ने मुक्ति अभियान शुरू किया। जनवरी 1943 में मोरक्को स्थित कांसाब्लांका में चर्चिल रूजवेल्ट ने जनरल दागल का एक शीर्ष सम्मेलन हुआ और युद्ध की नीति तय की गई। मई आते आते उत्तरी अफ्रीका मित्र राष्ट्रों के कब्जे में आ गया। जर्मनी युद्ध में जर्मन सेनापति रोमल ने बहुत प्रसिद्धि पाई और हिटलर को स्वयं अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। दूसरी ओर परस्पर प्रतिस्पर्धा के बावजूद आंग्ल अमेरिकी सहयोग में 8वीं सेना ने रेगिस्तानी युद्ध कला का उत्कृष्ट परिचय दिया। अब मित्र राष्ट्रों की फौज दक्षिण में यूरोप में प्रवेश करने का प्रयास करने लगी। इसी बीच इटली का फासिस्ट तंत्र लड़खड़ा गया। मुसोलिनी को इस्तीफा देना पड़ा और उसे बंदी बना लिया गया। इटली की नई सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया और मित्र राष्ट्रों से सहयोग के लिए अपनी पूरी शक्ति समर्पित कर दी। जर्मनी ने इनका जवाब रोम और उत्तरी इटली पर कब्जा करके दिया। उसके बाद शुरू हुआ वर्षों तक चलने वाला भयानक युद्ध, जिसमें मित्र राष्ट्रों की फौज धीरे धीरे आगे बढ़ पाई। अक्टूबर 1943 में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों ने यूरोपीय व्यवस्था पर विचार किया और भावी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की। नवंबर में मिस्र की राजधानी काहिरा में रूजवेल्ट, चर्चिल और चीनी नेता चियांग काई शेक ने पूर्वी एशिया के विषय पर विचार विमर्श किया। तत्काल बाद में ईरान की राजधानी तेहरान में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल मिले। इस सम्मेलन में जर्मनी के विरुद्ध तीन देशों ने मिलकर प्रहार करने की योजना बनाई और दुनिया में गुलामी तथा अत्याचार मिटाने के लिए अन्य देशों से सहयोग मांगा। अफ्रीका विजय के बाद यूरोप विजय के लिए अमेरिकी सेनापति आइजनहावर को संयुक्त यूरोपीय कमांडर का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। जून 1944 में फ्रांस में एक बृहत मोर्चा खोला गया। बड़े साहस से फ्रांस के उत्तरी पश्चिमी सीमा तट नामर्डी पर मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उतारी गई। स्थल और नौसेना के समन्वित प्रयास के रूप में इसे अपने ढंग का इतिहास का सबसे बड़ा अभियान माना जाता है। मित्र राष्ट्रों के उतर जाने के बाद फ्रांस का प्रतिरोध करने वाले आंदोलनों को बहुत बल मिला। एक ओर से मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बढ़ रही थी, दूसरी ओर से प्रतिरोध आंदोलन बढ़ रहा था। 3 अगस्त को देशभक्त आंदोलनकारियों ने पेरिस को मुक्त कर दिया। 2 दिनों बाद दागल पेरिस पहुंचा। उसकी जीत पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का इस अभियान के लिए फ्रांसीसी सेना ने ही नेतृत्व किया। इस अभियान का सबसे रोमांचक पक्ष यह रहा कि हिटलर ने पेरिस के जर्मन प्रशासक को पेरिस खाली करने से पहले नष्ट भ्रष्ट करने की आज्ञा दे दी। यदि ऐसा हो जाता तो विश्व का सबसे समृद्ध कला भंडार लुप्त हो जाता। भयानक अंतर्द्वंद जीते हुए और अपनी जान पर खेलकर जर्मन प्रशासक ने तब तक इस आज्ञा को के कार्यान्वयन को टाले रखा जब तक पेरिस और फ्रांसीसियों का कब्जा नहीं हो गया। धीरे धीरे फ्रांस, बेल्जियम और लुक्जमबर्ग आदि को मुक्त करा लिया गया। पूर्व में रूस की सेनाएं न केवल जर्मनी अधिकृत रूस को मुक्त करा चुकी थी, जब वे पश्चिम से तेजी से जर्मनी की ओर बढ़ रही थी, बाल्कन प्रायद्वीप को भी धीरे धीरे मुक्त किया जा रहा था। 1945 के प्रारंभिक महीनों में जर्मनी को उसकी सीमाओं में ठेल दिया गया। अब पूरब से रूसी फौजें और पश्चिम से मित्र राष्ट्रों की फौजें आगे बढ़ती राजधानी बर्लिन तक पहुंच गई। विश्वास किया जाता है कि बर्लिन की घनघोर लड़ाई के दौरान हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्रान के साथ आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसके साथ मरने के कुछ घंटे पहले हिटलर ने शादी कर ली थी। 17 मई 1945 को जर्मनी ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद इटली में भी प्रतिरोध खत्म हो गया। मुसोलिनी पहले ही अपने ही देशवासियों द्वारा मारा जा चुका था और फासिस्टों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस तरह पूरा यूरोप और अफ्रीका मुक्त हो चुके थे। अब केवल जापान से लोहा लेना बाकी था। जापान का विस्तार 1944 में रोका जा चुका था। अमेरिकी सेना ने धीरे धीरे दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं को आज़ाद करना शुरू कर दिया। यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मित्र राष्ट्र अपनी पूरी ताकत जापान के विरुद्ध लगा दी। जुलाई आते आते रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पोट्सडम में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली, रूसी नेता स्टालिन और चीनी नेता चियांग काई से कशिश सम्मेलन हुआ। इसके बाद जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई। एकदम निश्चित हार की निकटता के बावजूद जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी समय एक भयानक निर्णय लिया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान विभिन्न देशों ने अणु बम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता केवल अमेरिका को ही मिली थी। 6 अगस्त को जापान के नगर हिरोशिमा पर इतिहास में पहली बार अणु बम का प्रयोग किया गया। सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। फिर भी जुझारू जापानियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इन क्रूर प्रहारों ने इन नगर का वर्तमान तो समाप्त ही हो गया, विकिरण के नाते आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा पैदा हो गया, लेकिन इनका अपेक्षित नतीजा निकला और जापान ने हथियार डाल दिए। संधि वार्ताओं के बाद 2 सितंबर को करीब 6 वर्षों बाद इतिहास की सबसे बड़ी और क्रूर भयानक युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर 1919 की तरह प्रतिहिंसा का वातावरण नहीं था, क्योंकि युद्ध के दौरान भारी बम वर्षा और धुरी राष्ट्रों पर मित्रों ने अपना गुस्सा उतार लिया था। दूसरे पेरिस संधियों के परिणाम ने विजेताओं को अपेक्षित अधिक होशियार बना दिया था। इसलिए पराजित देशों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय युद्ध अपराधियों पर नूरेमबर्ग और टोक्यो में मुकदमा चलाया गया और युद्ध तथा नरसंहार में उनकी भूमिकाओं के अनुसार उन्हें सजा दी गई। जर्मनी, इटली और जापान में युद्धोपरांत स्थापित सरकारों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई। मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप में बिना विजेता और विजित को ध्यान में दिए हुए पुनर्निर्माण के व्यापक योजना की तैयारी की गई। इसके बाद योजना के कारण ही जर्मनी भी अपने पैरों पर खड़ा हो सका। कुछ ही दिन बाद यूरोपीय साझा बाजार में पराजित जर्मनी और इटली के साथ विजित देशों जैसे फ्रांस शामिल हुए और इन देशों की आर्थिक प्रगति की रफ्तार दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई। जापान में भी अमेरिकी प्रभाव में निर्माण कार्य शुरू हुआ और वहां तो अमेरिकी सेनापति जनरल मैकार्थर कई वर्षों तक एक प्रकार से शासक बना रहा। जापान कुछ वर्षों बाद ही सर्वाधिक तीव्र गति से विकास करने लगा। पराजित देशों में अमेरिकी पूंजी और प्रभाव मजबूती से स्थापित किए गए। इन देशों की प्रगति का लाभ परोक्ष रूप से अमेरिका को मिलता रहा। कुछ ही वर्षों बाद पूंजीवादी अंतर्विरोध प्रकट होने लगा और ये दूसरी श्रेणी के देश अमेरिकी प्रभुत्व से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से टकराने लगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में युद्ध के दौरान विभिन्न स्थानों पर शीर्ष सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इनमें डम्बार्टन ओक्स के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की योजना बनी और याल्टा और पोर्ट्सडम के सम्मेलनों में यूरोप की पुनर्व्यवस्था, एशिया और अफ्रीका में युद्धोपरांत की स्थिति, शांति और सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन के प्रस्ताव के आधार पर याल्टा में स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल ने भावी संयुक्त राष्ट्र संबंधी विवाद समाप्त कर लिए। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 50 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार राष्ट्र संघ को दफनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रखी गई। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही द्वितीय विश्व युद्ध का इंतजार होने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही तृतीय विश्व युद्ध के बॉर्डर मंडराने लगे। अगर क्रांतियों ने साम्राज्यवाद की रीढ़ नहीं तोड़ दी तो तीसरी महाविध्वंसकारी विभाषिका को रोक पाना कठिन होगा। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध का यह प्रलयकारी तांडव समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। श्रोताओं, इस अध्याय के साथ ही यूरोपीय इतिहास BA प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष का यह सिलेबस भी खत्म होता है। धन्यवाद। अरे यार, हाँ क्या होगा बे, बंद हो गया क्या?